श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मथस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद् एव चाहं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण, नूतन वर्ष अभिनंदन। हरे कृष्ण, इसका क्या मतलब है? नूतन वर्ष अभिनंदन, अभिनंदन किस लिए? क्योंकि ऐसी आशा है कि नूतन वर्ष में हम सुखी होंगे, तो यही आशा कृष्ण भक्ति के विरुद्ध। मतलब सामान्यतः इस भौतिक जगत में सब ऐसे इच्छुक होते हैं कि हम इस भौतिक जगत में सुख और शांति में रहेंगे, और अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भक्ति कहते हैं जैसे कि हम भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेंगे इस भौतिक जगत में, इंद्रिय सुख के द्वारा सुखी होंगे। तो सामान्यतः नूतन वर्ष अभिनंदन का मतलब, तो मैं कृष्ण को भोग करता हूँ, तुम भी भोग करो और हम एक साथ इस भौतिक जगत में रहेंगे कृष्ण को भोग करने से। और अगर कृष्ण को स्मरण करना है तो खाली इनका आशीर्वाद लाना है, जैसे कि हमारी सभी भौतिक आशा पूर्ण होगी। लेकिन यही आशा दुराशा है, दुराशा यही बहिर्वाथ मानिना। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भौतिकवादियों की सभी आशा दुराशा है। आशा है कि हम भौतिक जगत में सुख और शांति में रहेंगे, यही आशा दुराशा है। अर्थात इसमें उद्देश्य जो है दूषित है, तो ऐसे ही दुराशा है। और ये आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, उससे भी दुराशा है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मथस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ज्ञान स्मृति और विस्मृति होती है। तो ये स्मृति तो खाली स्मृति शक्ति नहीं है, ऐसा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनकी स्मृति शक्ति बहुत बहुत होती है, और नहीं जैसे मूर्ख है जिनकी स्मृति शक्ति बहुत कम होती है। इसलिए वो श्लोक जो कितना हजार बार बोला लेकिन तो याद नहीं होता, तो विस्मृति होती है। लेकिन भौतिक स्मृति शक्ति ज्यादा या कम होना तो यही ईश्वर का, ये ईश्वर का एक अर्थ है। लेकिन मुख्य अर्थ है कि भगवान की स्मृति करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शाम था, नहीं वो श्लोक नहीं, ये ददामि बुद्धि योगं च die Stoffe, Smriti Shakti bahut kam hai. Tesham satasa yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena maha upayanti te. Shri Krishna kehte hain ki jo vasavik priti se meri aradhana karte hain to aise bhakt ko buddhi deta hoon. जैसे कि वे मेरे पास आ सकते हैं. और गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति तो श्री कृष्ण की सहायता से हा जन्म में बूढ़ा जन्मने मान प्राप्त तो हर जन्म में श्री कृष्ण को भोग करते हैं. और इसलिए बूढ़ा जन्म बूढ़ा योनि में जन्म लेते हैं, इसका अर्थ है पशु योनि में या इस मानव शरीर मिल के भी तो राक्षस जैसे कुल में जन्म लेते हैं. और ऐसे हर जन्म में कृष्ण को प्राप्त नहीं होते. तो इसका अर्थ है कि अगर हमारी हार्दिक इच्छा होती है भगवान की सेवा करने तो भगवान जो सबके हृदय में है और सबकी हृदय स्थिति जानते हैं तो अगर भगवान देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही उत्साही है इनकी सेवा करना तो भगवान इनकी सहायता करते हैं. और अगर भगवान देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत उत्साही है भगवान को स्मृति नहीं करना तो भगवान ऐसे व्यक्ति को भी सहायता करते हैं. मत्य न कृष्ण परतस्वतोगा मिथो विभजे च गृह व्रतान अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चारित चारणान. एक प्रकार के व्यक्ति हैं जिनकी मति कभी भी कृष्ण सेवा अनुरक्त नहीं होगी क्योंकि वे संकल्प किया है कि मैं कभी भी कृष्ण भावना से भावित नहीं होगा. तो खुद का प्रयास से मैं कभी भी कृष्ण भक्त नहीं होगा. खुद का प्रयास मतलब तो ऐसा अगर संकल्प हो कृष्ण भक्ति नहीं करना तो कैसे खुद का प्रयास से वे कृष्ण भक्त होंगे, इसका क्या प्रश्न है. तो ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल होते हैं आध्यात्मिक होते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति आध्यात्मिक होने से कहते हुए आध्यात्मिक होने से कृष्ण भक्ति से और ज्यादा दूर जाते हैं. आध्यात्मिकता में रुचि होती है लेकिन वो किस प्रकार की आध्यात्मिकता जिसमें निर्विकार परम सत्य अनुसंधान करना है, जिसमें कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण असमर्दवा इनके समान और ऊपर कोई नहीं है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण. तो एक प्रकार के कहते हुए साधु या आध्यात्मिक वादी है जो ध्यान करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं इत्यादि, लेकिन कृष्ण माटी नहीं होते हैं और अगर कृष्ण माटी होती है वो सही नहीं है, वो खाली दिखाने के लिए तो भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति करने से अभिप्राय है नहीं है भगवान की सेवा करना, भगवान को मार डालना। तो हम भक्ति करते हैं, हे जगदीश, हे भगवान, हरे कृष्ण भी करते हैं, लेकिन अभिप्राय है कि ऐसे समझने की वास्तव में कृष्ण का कोई रूप नहीं। हरे कृष्ण भी बोलते हैं और बोलते हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन बोलते हैं कि कृष्ण का हम कृष्ण का रूप की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण का कोई सत्य रूप नहीं है, ये काल्पनिक रूप है, ऐसा बोलते हैं। और स्वाध्याय करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, गोलोक निवासी है, लेकिन गोलोक और कृष्ण अज्ञात से आया है। तो ऐसे भक्ति का नाम में भगवान को द्वेष करते हैं, तो ऐसे खुद का प्रयास से काल्पनिक या द्वेष संपन्न या अभिनय जैसे भक्ति करके भी तो कभी भी भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं होते। अशोधाना पुरुषा धर्म से परंत का अप्राप्य मान्य वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। अगर भक्ति करना है लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं होती है कि कृष्ण सारा राजा है, कृष्ण ही परम सत्य का अंतिम वचन है, तो अगर ऐसी श्रद्धा नहीं होती है तो भक्ति नहीं होती है। आदर श्रद्धा भक्ति में सर्वप्रथम श्रद्धा होना चाहिए। तो अगर भक्ति करने है और अगर देखते हैं कि वो व्यक्ति भक्ति से भावाधिष्ठ होते लेकिन उसका गलत सिद्धांत है कि भगवान का कोई रूप नहीं है या रूप है लेकिन वो रूप अव्यक्त से आते हैं और भक्ति करने से हम भगवान के रूप में या ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो ये सब भ्रम धारणा से भक्ति नहीं होती, ये तो भक्ति नहीं है। तो भगवान सबके हृदय में है और भगवान जानते हैं हमारा क्या उद्देश्य है। तो अगर एक व्यक्ति ऐसी भक्ति करते हैं या अन्य अन्य कहते हुए धार्मिक पंथ अवलंबन करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है भगवान की सेवा करना, उद्देश्य है भगवान की सेवा नहीं करना, खुद का इंद्रिय सुख पर तत्पर होते हैं या सोचते हैं कि ध्यान यज्ञ हवन इत्यादि करने से तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति तो कभी भी भगवान की सेवा तब नहीं होते क्योंकि उसकी उद्देश्य ऐसे नहीं है। तो भगवान सबके हृदय में है और सबके हृदय की इच्छा के अनुसार भगवान यथार्थ स्मृति विस्मृति और ज्ञान देते हैं। तो पहले हमारी क्या इच्छा है तो इसको निर्णय करना चाहिए, क्या इच्छा है, किसलिए भक्ति में आए या किसलिए भक्ति नहीं करते। तो एक प्रकार के व्यक्ति है जो भगवान को कभी भी नहीं मिलते भक्ति करके भी, तो अगर वो भक्ति शुरू से द्वेष से कर रहे हैं, वो भक्ति पुतना भक्ति है, पुतना राक्षस। कृष्ण के पास आए हैं और भक्ति जैसे बहुत दिखाए, लेकिन पुतना का उद्देश्य भगवान को मार देना। तो पुतना का पूर्व जन्म की छोटी सी भक्ति भावना ग्रहण करके भगवान कृष्ण वो राक्षसी को वात्सल्य सेवा दिया है। लेकिन सामान्यतः अगर एक व्यक्ति ऐसी पुतना भक्ति करते हैं, तो अगर भगवान स्वराम से मार जाते हैं पुतना जैसे, तो भगवान की विशेष कृपा से भगवत भक्ति मिलती है। पुतना तो पिछले जन्म में बाली महाराज की बहन रत्नामाला थी, और जब पहले पहले वामन देव को देखी तो वो सोचे तो इतना सुंदर बालक है, और मातृभाव से वामन देव को स्नेह होती। लेकिन बाद में जब देखे कि ये वामन देव भगवान विष्णु है, हमारे कुल के शत्रु है, तो फिर वामन देव को शत्रु भाव किया। लेकिन क्योंकि बहुत थोड़ा समय में कुछ मातृभावना थी, उसलिए श्री कृष्ण उसको ग्रहण किया, और उसके अगले जन्म में तो वो शत्रु भाव से भगवान कृष्ण को मार डालने के लिए आए हैं। तो कृष्ण पुतना को यथेष्ट दंड दिया, शासन दिया, और फिर क्योंकि वो पूर्व जन्म में कुछ थोड़ी सी भक्ति भाव में थे, तो श्री कृष्ण पुतना को पूरी भक्ति का फल दिया, मातृ माता का फल। लेकिन सामान्यतः जो भगवान को द्वेष करते हैं तो ऐसी स्थिति में होते, बूढ़ा जन्म में जन्म हर जन्म में असुरिक योनि में प्रवेश करते हैं। तो भगवान हमारी हृदय हृदय की स्थिति के अनुसार हमको स्मृति और विस्मृति देते और ज्ञान देते। जो ज्ञान का नाम में चलते हैं आधुनिक समाज में, वो अज्ञान है। वो ज्ञान है कैसे इंद्रिय तृप्ति होती है, तो वो ज्ञान नहीं है। ये सब इंजीनियरिंग साइंस मैथमेटिक्स तो पूरा उद्देश्य है इंद्रिय से। तो हम ऐसे बोलते नूतन वर्ष अभिनंदन, इसका मतलब तो तुम सुखी हो भौतिक जगत, और मैं सुखी होऊंगा, और हम सब एक साथ कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करके सुखी रहे। तो नूतन वर्ष अभिनंदन, तो वास्तविक अभिनंदन क्या है? कृष्ण ही नाति रास्तु, कृष्ण नाति हो, तो ये ही सही नूतन वर्ष अभिनंदन। कृष्ण भक्ति करो, आपका परम कल्याण होगा, लेकिन जो सुख और शांति चाहते हैं भगवान की सेवा से देना, तो वे ऐसे अभिनंदन नहीं चलते। ठीक है, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन किस लिए? भगवान सबका हृदय देखते हैं अंदर से, क्योंकि वे सबके हृदय में विराजमान है। तो पहले से हमारा क्या उद्देश्य है, तो इसको ठीक करना चाहिए। हमारा क्या उधर क्या इच्छा है, अगर इच्छा हो हम भगवत धाम जा सकते, अगर इच्छा हो हम नरक जा सकते, अगर इच्छा हो हम देवता हो सकते, अगर इच्छा हो हम पुत्र धनी इत्यादि हो सकते। तो क्या इच्छा है, इच्छा के अनुसार हमारी स्थिति बन जाते हैं। यम यम वापि स्वयं भावं त्यजन्ति कलेवरं तं तं वैते कौन्तेय सदा तद्भावधारिताः। मृत्यु का समय मानसिक भावना के अनुसार हम नया जन्म लेते, और मृत्यु के समय जो भावना इस जीवन में हमें चास के ऐसे बोलते चास के हैं, विच वी हैव कल्टिवेटेड, जो हमें अनुशीलन के हैं, जो हमें उपार्जन किया, विच वी अर्न, जो हमें छास के है, ऐसे नहीं बोलना इंग्लिश, बंगाली मीन्स कल्टिवेशन, एक्चुअल शब्द है अनुशीलन, लेकिन लोग तो नहीं जानते, ये सब उर्दू बात बोलते, उर्दू में आधुनिक हिंदी में ये सब शब्द जो एकदम यथार्थ है, ये सब आध्यात्मिक कथा व्याख्या और समझने करने के लिए, तो आज तो कोई नहीं जानते। तो वास्तविक शब्द है अनुशीलन, अनुकूल कृष्ण अनुशीलन, तो कृष्ण अनुशीलन, अनुशीलन का मतलब, अनुशीलन का मतलब वो जीवन में ही सब कुछ करना जैसे कि कृष्ण भक्ति होती है, सब कुछ जो करना है, सोचना है, बोलना है, सभी इच्छा इच्छा भी तो कृष्ण केंद्रित होना चाहिए। तो अगर ऐसे ही जीवन में कृष्ण भक्ति साधना करना है, और वो साधना का उद्देश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो अगली जन्म तो गोलोक धाम में कृष्ण प्राप्ति कैसे होते हैं, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना कैसे प्राप्त होते हैं, तो लालच, ललाच, भौतिक ललाच नहीं है, लालच का मतलब जुड़ा इच्छा से, कृष्ण भक्ति रस भागतमति क्रियताम यदि कथोपि लभ्यते तस्य लोयम अपि मूल्यम एकलम, जन्म koti sukritai na labhyate. Ye Krishna bhakti, Krishna bhavana, rasa mati. Lamba shakti. Krishna bhavana. Oh, Krishna bhavana se ras jo milte iska anusa mati jo hai. To agar bechna hai kisi jayega mein to kharid lo. To uska kya daam hai, kya dena hai. To paise dene se Krishna bhakti kharidna nahi hai. Kharidna ka cheez nahi hai, bechna ka cheez nahi hai. To kya daam dena hai, to ek hi mulya hai, lalasa. Lalasa ka matlab ye bahut dhani ichha. ऐसी इच्छा जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं है, तो ऐसी इच्छा होना चाहिए कि अगर क्रॉ क्रॉ साउंड में स्वाद सुख प्राप्त होते हैं और एक सेकंड में कृष्ण सेवा करना है, तो क्या इच्छा है? तो एक सेकंड में मैं कृष्ण सेवा करूं. तो क्रॉ क्रॉ साल स्वाद सुख प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है. कीट जन्म हाउ तथा थुआ दस वही मुक्त ब्रह्म जन्म नहीं आश. भक्ति नव ठाकुर कहते हैं कि मैं कीट होगा अगर अवसर हो आपकी अर्थात भगवान की सेवा करना, लेकिन अगर अवसर हो ब्रह्मा होना सृष्टि ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पद प्राप्त करने का अवसर हो, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्म अभक्त ब्रह्म, तो ऐसे ब्रह्मा होने की कोई इच्छा नहीं है. तो यही लालसा कि जो भी करना है मैं करूंगा विश्व भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए. फिर हम भगवान की दया से ऐसी स्मृति मिलेंगे, ऐसा ज्ञान मिलेंगे, जैसे कि हम उनके पास जा सकें और हमारी सभी भौतिक इच्छाओं की विस्मृति होगी. लेकिन जिनके उद्देश्य नहीं है कृष्ण सेवा करना, अदांत गोभ्य इंद्रियों को दमन नहीं करना का दोष से नरक में प्रवेश करते हैं. अदांत गोभ्य विषतांत मिश्रम पुनः पुनश्चारण. तो पहले से निर्णय करना चाहिए, तो हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है. तो अगर कहे हमको नूतन वर्ष अभिनंदन बोलते हैं, तो आप क्या कहें? तो मुझे आशीर्वाद दे, जैसे कि मैं नूतन वर्ष में हर सेकंड में कृष्ण की स्मृति करूंगा और हर सेकंड में भी कृष्ण की विस्मृति नहीं करूंगा. लेकिन जो नूतन वर्ष अभिनंदन देखते हैं, तो आशीर्वाद नहीं दे सकते ऐसी कृष्ण भक्ति देना, क्योंकि कृष्ण भक्ति में नहीं. तो आप ऐसे कहो तो आपको भी आशा है कि इस वर्ष में आपकी शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो कितने वर्ष के बाद हो, कितना वर्ष हो गया जिसमें भक्ति नहीं होती और कितना वर्ष होगी जिसमें भक्ति नहीं होती। तो इस वर्ष में ही, गया वर्ष में और सब सामने होने वाले वर्ष में अगर कृष्ण भक्ति नहीं होती है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, सुख और शांति नहीं होती है और खाली अभिनंदन बोलने से कुछ कल्याण नहीं होगा। तो यही समझिए चलिए, नूतन वर्ष अभिनंदन। हरे कृष्ण। प्रश्न है, हरे कृष्ण।